अब आप और मैं सोचें, हम अपने बच्चों को कैसे एक मकसद की तरफ लेकर आए, कैसे उनकी जिंदगी में खैर आए। आप देखिए कि आपकी सबसे कीमती चीज क्या है, सोचें जरा खुद। क्या वो डायमंड का सेट जो आपको मुंह दिखाई में मिला था, और जो शायद आपने उसी को नहीं अब दिखाया कभी जिसने दिया था, क्योंकि लॉकरों में रखे हुए हैं, और क्या फायदा, पाए रखे तो खराब हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। नहीं, क्या आपकी गाड़ी जिसकी चाबी आपके हाथ में है वो कीमती है, या आपका वो सेलफोन जो सारा दिन आपको अल्लाह की बातें सुनाता और सुनवाता है। नहीं, आपकी सबसे कीमती दौलत आपका बच्चा। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अकेले में एक एक से भी अगर मैं आपसे पूछूँ, जो मुमकिन नहीं होगा, इसके बावजूद भी अगर मैं आप सबसे एक बात पूछूंगी ना, कि ये बताएं कि आपका इस वक्त सबसे बड़ा गम या कहना चाहिए कि परेशानी क्या है, तो आप कहेंगे कि बच्चे, आपने, मैंने अपने बच्चों को जिस तरह से ब्रॉट अप किया, जैसा कि वक्त और माशरे का दस्तूर था, वो सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद थी। देखिए, एक फर्क समझिए, एक है मुस्लिम का बच्चा और एक है नॉन मुस्लिम का बच्चा। दोनों को दुनिया में पनपना है, दोनों को कैरियर बिल्ड करना है, दोनों की जिंदगी है, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। मुसलमान का बच्चा शाहीन का बच्चा है, उसकी निगाह बड़ी दूर होती है। वो तो वो है जिसको अल्लाह ताला कुराने पाक में कहते हैं, कुल अउनब्बियुकुम बिखैरे मिन ज़ालिक, क्या मैं तुमको इन सारी चीज़ों से बेहतर ना बताऊं। पहले पूरी लिस्ट है सूरत आले इमरान की आयत 13 या 14 गालिबन, के ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहावाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिन ज़हबी वल फिद्दा। आप नंबर नोट करें, जाके आयत खुद पढ़ के देखें, पूरी लिस्ट है दुनिया में वो चीज़ें जो आपका मेरा गोल है, कैरियर है, सारी लिखी हुई है उसमें। लेकिन अब वो सारी बातें जो लिखी हुई हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं हमारे आपके, अल्लाह उन सब के बाद कहते हैं, कुल्ला नबियुकुम भी खैर मिन ज़ालिकुम, कि इन सबसे बेहतर ना बताऊं। और फिर एक लंबी लिस्ट है जन्नत की चीज़ों की। मुसलमान का बच्चा दुनिया की हर तरक्की ले ले, हर मेडल ले ले, हर कामयाबी का तमगा उसके गले में डल जाए, फिर भी वो कामयाब नहीं है जब तक के फमन जुख्सिहानि नारी बहुत खिलल जन्नत फ़कद फ़ास वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये भी सूरत आले इमरान में ही है कि जो जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है, और ये दुनिया की जिंदगी ये एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। एक नॉन मुस्लिम का बच्चा अगर 6 घंटे स्कूल में पढ़ाता है, और मैथ, साइंस, लिटरेचर, जो बच्चों के छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, अगर वो होमवर्क 100% करके स्कूल से घर आ गया, और टीचर्स ने माशाल्लाह इतनी मदद की माँ बाप की कि होमवर्क घर के लिए दिया ही नहीं, तो उसने उस दिन का हक अदा कर दिया। अब उसकी माँ उसको कह सकती है कि अब टीवी वॉच करो, कार्टून्स देखो, फिल्में देखो, कुछ भी कर लो, क्योंकि उसने आज का गोल पूरा कर लिया। और हकीकत है, दुनिया की तालीम इतनी मुश्किल नहीं है। अब वो बाकी वक्त में फ़न और एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी करें, लेकिन याद रखिए, एक मुसलमान माँ के घर में पैदा होने वाला बच्चा, पहले यहाँ ये बात याद रखिए कि बच्चा हर एक मुसलमान होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, फिर फाबावाहू, फिर उसके माँ और बाप जो दोनों हैं वो उसको, किसी को यहूदी बना देते हैं, किसी को नसरानी बना देते हैं। लेकिन चले मान लेते हैं, हम लोग दुनिया में जीने के लिए बच्चों के लिए 8 से 9 घंटे पढ़ना, स्कूल में जाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने उमड़ते हुए जज्बात को पूरा कर लेना काफ़ी है। मसा जब किसी को भी देखिए, जब वो डॉक्टर बन जाता है, फिर उसका क्लिनिक बन जाता है, फिर उसका घर बन जाता है, तो एक दुनियावी एतबार से तो माएँ भी खुश होती हैं कि ये कामयाब है। नॉन मुस्लिम घर नहीं बनाते ज़्यादा, उनका कामयाबी का मेयार क्या है? कई महीने हो गए हैं, एक माँ ही से पता चला, बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि होश गुम करने वाली बात है मेरे लिए। हो सकता है आप लोगों को चूंकि पहले से पता होगा, मेरे दिन में हमेशा एक क्वेश्चन होता है जब भी मैं किसी नॉन मुस्लिम साथी के साथ भी बैठती हूँ जहाज़ में या जहाँ भी मौका मिले, तो मैं ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हमारे हिसाब से बुरी हैं हमारे बच्चों में, क्या नॉन मुस्लिम्स को भी अपने बच्चों के हिसाब से वो बुरी ही लगती हैं? बात समझ गए? मसलन आप देखिए कि जैसे फ्रेंडशिप है, ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती हमारे कल्चर में बुरी है ना, अभी तक भी बुरी है। ये अलग बात है कि पहले एक्सपेक्टेड थी, अब एक्सेप्टेड होती जा रही है। पहले तवक्को थी कि ऐसा होगा, और होते होते आप उसको कबूल भी करते जा रहे हैं। कुछ माएँ बड़े लाड से कहती हैं दोस्ती कर लो लेकिन मुसलमान लड़की से करना, और किसी का मशवरा ये भी होता है कि हाँ हाँ दोस्ती कर लो लेकिन उससे जिससे शादी करनी है, और एक माँ अदा से कहती है मेरे बेटे ने मेरी जूतियाँ पटकने से बचा लिया, खुद ही लड़की ढूंढ दी। ये एक्सेप्टेड है, जिसको कहते हैं ना कि जो ना खूब था वो खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। कौमों का ज़मीर या कौमों का जो भी हिसाब बदलता है, ये बात सच है कि गुलाम कौमें फिर गुलाम ही हो जाती हैं। अब मैं आपसे जो बात इस वक्त छेड़ बैठी हूँ वो क्या है, इसको समझ लीजिए। एक गैर मुस्लिम माँ अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखती है जो उसके लिए नोन है, उसको लगता है कि हमारे घरों में ऐसे ही होता है। जैसे मुझे एक माँ ने बताया, बारनेहागे कहते हैं डे केयर सेंटर्स को नॉर्वे में, कि बच्चों का पसंदीदा खेल मामा पापा बनना है, यानी इस जगह बैठकर वो बातें शेयर करने वाली भी नहीं है जो कई माओं से मेरे तक भी पहुंची हैं, कि आप छोटे बच्चों के स्कूलों में ड्यूरिंग द प्लेइंग टाइम बच्चों को जो कुछ करते देखती हैं। हमारी एक साथी हैं तो उनको प्रैक्टिस के लिए किसी डे केयर में भेजा गवर्नमेंट ने, ताकि आप बैठें और वहाँ सीखें, ताकि कल आपको जॉब की ज़रूरत हो तो हम आपको भेज दें। तो वहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग टाइम होता है, तो कहने लगी कि एक बच्ची थी तो वो ज़रा सी बाकी बच्चों से बड़ी थी, लड़की थी और वो बाकी ज़्यादा लड़के थे, तो इसको उस लड़की की कुछ हरकतें मशकूक लगती थी। जब बच्चों के नैप का या रेस्टिंग का टाइम होता था ना, तो वो हमेशा अंदर एक कमरे में जाना चाहती थी अकेले में। तो ये कहती है कि जैसे वो हमारी माओं की एक तीसरी आंख खुल जाती है कि बच्चे पे शक हो, तो कहती मैंने उस बच्ची को ऑब्जर्व करने की सोच से उस कमरे में बैठना शुरू किया। इसका काम सिर्फ ये होता था, इसने सारा दिन रहना है, बुक्स पढ़नी है, देखना है, जस्ट ऑब्जर्विंग। तो कहती मैं उस कमरे में बैठ जाती थी अपनी बुक लेके कि ज़रा मैं देखूँ ये बच्ची करती क्या, हत्ता कि वो बच्ची इससे कनिंग फील करने लग गई। फिर उस बच्ची ने, आपने उस डे केयर वालों को कहा कि इन आंटी को यहाँ से भेजें, तो स्कूल वालों ने इनको ये कहकर कि देखिए सिस्टर आप रिसेप्शन पे बैठे, एक बच्ची को डिस्टर्ब करने का आपको हक नहीं है, आप बैठी भी रहेंगी लेकिन बच्ची आपकी वजह से डिस्टर्ब होती है, तो शी हैज़ राइट टू डू वट एवर शी वॉन्ट टू डू। अब आप मुझे बताइए, जब इस किस्म के हालात होते हैं, छोटे बच्चों को जो कुछ बताया और दिखाया जा रहा है, ये तो एक ऐसा नींदें उड़ाने वाला टॉपिक है कि वल्लाह ही अगर आज ये टॉपिक खुल गया तो हम और ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में। बचपन से ही अब उनके माइंडसेट किए जा रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो रही है, पहले ब्लू और पिंक का तसव्वुर था, अब इसको ख़त्म किया जा रहा है, सब एक ही होते हैं। लड़का लड़की को साथ बिठाना, ये तो बहुत सालों से आपको भी पता है कपल्स, फिर जब ज़रा सी एज जाती है 8-10 साल की, जो बात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़दह थी, मैं ये सोचती थी कि हम अपने बच्चों में ऐसी कोई चीज़ देखें तो जिसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं ज़िबा कर दें, गुस्सा तो ऐसे ही आता है ना माँ बाप को, ये क्या कहते हैं? तो उन्होंने बताया स्कूल्स वाले हाई स्कूलों के करीब जो भी एज के बच्चे पहुंच जाते हैं तो वहाँ इसको एज अ हक समझते हुए उनको प्रोटेक्शन देते हैं कि अब इनकी उम्र है, इनके इमोशंस बढ़ रहे हैं तो इसको निकलना चाहिए इन जज्बात को, आप खुद ही समझ जाइए। अब कहते हैं इट्स देयर राइट, हम कहते हैं ना ये करना गुना है, वो कहते हैं ये ना करने देंगे तो आप बच्चों को इमोशनली डिस्टर्ब करें, लिहाजा स्कूलों में ऐसी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। उस दिन फिर मुझे समझ आया था कि आज से 5 या 10 साल बाद अल्लाह ना करे हमारे ही मुस्लिम बच्चों ने हम माँ बाप को और ज़्यादा रिजिड और एक्सट्रीमिस्ट कहना है कि आप तो हमारा हक दबा रहे हैं, और अगले सालों में क्या होगा, ये मुस्लिम्स पर एक और इल्ज़ाम लगेगा। देखिए आप सोचिए, पिछले 10 साल पहले लफ्ज़ एक्सट्रीमिज्म लफ्ज़ क्या था, जिसको ज़रा ज़्यादा ही यानी दीन के हुक्मों पे अमल करता हुआ देखते थे। आज के दौर का एक्सट्रीमिज्म क्या जुमला है आपको पता है? कहते 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, इट्स टू मच, दे आर एक्सट्रीमिस्ट। ये आज के दौर का एक्सट्रीमिज्म है कि अगर किसी मेहमान को 5 दफ़ा मस्जिद में ले जाना ही पड़ जाए क्योंकि वो घर में नमाज नहीं पढ़ेगा, तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है, कल अगले वक्त में क्या होगा, ये पूरे कपड़े पहनना एक्सट्रीमिज्म है। ये शादी के बगैर बच्चों को तरसाते रहना, ये एक्सट्रीमिज्म है। आप फील तो कीजिए जिस डगर पे इस वक्त उम्मते मुस्लिमा जा रही है, रियल फैक्ट्स हैं, वल्लाही फैक्ट्स हैं, मैं अपने पास से ये बातें नहीं आपसे कर रही। जो टारगेट करके इस वक्त हमारे बच्चों के ब्रेन स्टॉर्म किए जा रहे हैं इस चीज़ पे कि मुस्लिम पेरेंट्स आर वेरी रिजिड, और आओ हम तुम्हें बताते हैं क्या, क्या आप और मैं अपने बच्चों को पीछे डालकर सिर्फ दौरे कुरान कर कर बख्शे जाएंगे? हम 2.5 घंटे कुरान का पारा सुने और वो अपने कंप्यूटर अपने फ़ोन से जो चाहे देखे, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। और आज देखिए कि बच्चे बेचैन हैं। कभी आपने लफ्ज़ डिप्रेशन यूथ के साथ नहीं सुना था? डिप्रेशन कब आता था? जब बुढ़ापा शुरू होता है, मीनोपॉज आ गया, या दोनों में से एक साथी दुनिया से चला गया। अब इतने साल का साथ होता है, एकदम औरतें डिप्रेस हो जाती हैं, मर्द डिप्रेशन में चले जाते हैं। या मर्दों में मैंने सुना वह डिप्रेशन कब आता था, जब एकदम बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान होता था, कोई डॉलर की कीमत ऊपर नीचे चले गई, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे। आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, यूथ को डिप्रेशन है। एक बच्ची है तो वो अपने हाथ काटती है, इसके पूरे बाजुओं पे बाइट्स के निशान है, किस चीज़ के, खुद अपने ऊपर जब उसका कंट्रोल नहीं रहता तो फिर वो खुद को काटती है, और उस काटने के दौरान वो फिर अपने आप को तकलीफ़ देती है, उसको सुकून मिलता है, उसको इसमें मज़ा आता है। आखिर अंदर क्या दर्द छुपा हुआ है? आप अपने ऊपर लीजिए, जिस घर में बहुत सारी बहनें होंगी आप में से, वो ज़रूर इस बात की तस्दीक करेंगी, बच्चियों वाले घर को क्या कहते थे लोग, जिस घर में 3 4 बच्चियों, बताइए, रहमतों वाला, बरकतों वाला, और जी मज़ा आता था, कह कहे कहते थे, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती, चुप तो किया करो, हंसी मजाक रौनक खिलखिलाना। देखिए मैं आपके घरों को नहीं जानती, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ही जानती है ना, बच्चों को नहीं जानती, इसलिए अगर किसी के घर का क्या हालात है मैं नहीं मान जानती तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आज हमारी जवान बच्चियों के चेहरे पे वो खिलखिलाहट नहीं है, वो स्माइल नहीं है, वो मुस्कुराहट नहीं है, वो चुलबुलापन नहीं है। मैयत वाले घर में अंदर बढ़ के कह के लगा रहे होते थे बच्चे, हंस रहे हैं खेल रहे हैं, उनको गम ही कोई नहीं था। आज हमारे बच्चे वक्त से पहले बूढ़े हो गए। हमारे स्कूल में एक बच्ची आई, ऐसी होगी टीनेजर, यानी 16 17 18 साल की, यानी कॉलेज उसका शुरू हो गया था, जो भी एज थी। तो मैंने एक दफ़ा उनको स्टडी करने की खातिर इस मौजू पे बात की कि आज मैं यूथ के चेहरों पे स्माइल नहीं देखती, खुश नहीं दिखते, हालांकि हाथ में इतना महंगा फ़ोन है, गाड़ी भी अब खुद मिल गई, सब कुछ है। तो उन्होंने एक बहुत ही दर्द मरी बात कही जिससे वाकई मुझे उनका पेन फील हुआ। कहने लगी कि उस्ताजा, जब कंधों पे इतने कर्जे हों तो हंसी कैसे आए? हैं अल्लाह रहम करे, आपको क्या हुआ है, आपने क्यों कर्जा लिया है? फिर उन्होंने मुझे जो कुछ सेटअप चलते हैं माशरों में वो सुनाए, स्टडी लोन। एक बच्ची जब कॉलेज में जाती है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, हर मुल्क का फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, स्टडी लोन लेकर बच्चे पढ़ते हैं, और अगर वो पढ़ते रहें और फिर बाद में कुछ साल बाद पे कर दें तो उतना ही देना होता है, और अगर पढ़ना छोड़ दें या जो पढ़ा है उससे आगे काम ना लें तो शायद फिर इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। यकीन करें मुझे उस दिन समझ आई कि अल्लाह ना करे इस वक्त इस उम्र में आपके मेरे ऊपर 100 रुपये का भी कर्ज हो, जैनाता। किसी का आपने 1 पाउंड देना हो, जैनाता। तो इन मासूमों की जवानी तो हमने छीन ली कि जिनके कंधों पे कर्जों के बोझ हैं। फिर इसी तरह एक दूसरी बच्ची से भी एक दफ़ा मेरी खुद पर्सनल मुलाकात, और ये फर्स्ट हैंड बातें, मैं आप मुझे किसी की सुनाएंगे मैं नहीं सुनूंगी, ये वो बातें जो खुद अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कोई बताता है। बहुत अच्छी बच्ची, बाकायदा वीकेंड क्लासेस में आने वाली, 1-2 साल आती भी रही, एकदम मैंने देखा तो गायब हो गई, नहीं आ रही, या मेरी मुलाकात नहीं हुई। इत्तफाक था एक दफ़ा किसी दर्स में मैंने आना था, तो जब मैंने बाहर आई तो देखा तो वही बच्ची मुझे लेने आई हुई थी। अब आज ज़रा 2-2.5 साल गुजर चुके थे, गाड़ी भी हाथ में है, ज़रा बड़ी भी लग रही थी। खैर किस्सा मुख्तसर, बातचीत होते हैं पे पूछा, बेटा आप किधर हैं, क्या हो रहा है? कहती मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी क्लास को। तो मैंने कहा फिर आप आ क्यों नहीं रही? तो स्टडीज़ तो मुझे पता है कि वीकडेज में होती हैं, वीकेंड पे तो नहीं होती। कहती मैंने जॉब शुरू कर दी है। तो मैंने कहा जॉब की क्या ज़रूरत थी आपको? तो कहने लगी कि मैंने लोन पे करना है। मैंने कहा लोन की क्या ज़रूरत थी? मेरा ख्याल था ये स्टडी लोन की बात करेगी। कहती मैंने घर खरीद लिया है। अच्छा मुझे अपने ऊपर शक हो, मैंने कहा आपकी शादी हो गई है? कहती नहीं, शादी के लिए घर खरीदा। सारी बात का खुलासा जो नॉर्वे में बैठे वो समझ रहे होंगे, आपको शायद ना समझ आए, कि शादी करने के लिए एक लड़की को, अगर लड़के को बाहर से बुलाना है तो पहले उसको कुछ अरसा जॉब करके दिखानी है, टैक्स देना है, फिर अपना घर लेना है, फिर एक सर्टन अमाउंट बैंक में होगी तो फिर जिसके साथ शादी होगी उसको वो स्पॉन्सर कर सकती है। अच्छा अब तो मेरे वो पांव तले ज़मीन निकल गई। पहले शादियां पहले होती थी, घर तो दोनों मियाँ बीवी मिल के दुआओं से और कोशिशों से 10-15 साल बाद बनाते थे, ऐसे ही ना, या किसी को वरसे में मिल जाता था। तो ये बच्ची बेचारी के कंधों पे इतना बोझ क्यों डाल दिया? मैंने कहा कि आपने घर कैसे लिया ना? कहती मैंने उस पर लोन लिया। अब वो चूँकि बच्ची थी तो वो छुपाया भी नहीं रही थी, तो वो बताई जा रही थी। कहती मैंने 3 मिलियन क्रोन का घर लिया है। तो आपके 3 लाख पाउंड हो गए, इसलिए फिक्र ना करें, इतने के ही आते हैं आम घर। अच्छा मैंने कहा कि 3 मिलियन का घर लिया आपने? तो मैंने दिल में सोचा कि जाहिर है कि अच्छे माँ बाप की बच्ची है, कुछ पैसे होंगे, कुछ थोड़े बहुत होंगे। तो मैंने कहा अब लोन कितना है आपके ऊपर? तो कहती 10,000 कम 3 मिलियन, पूरा ही लोन है। मैंने कहा आपको दिया किसने घर? कहती वो कुछ डाउन पेमेंट दे के हर महीने का कर्ज है। मैंने कहा ये घर कब पे होगा? कहती शायद 22 साल या 20 साल की किस्तें हैं। फिर मैंने उससे पूछा हर माह कितना देते हो? वो दिल की बातें बताई जा रही थी, यानी बिलीव में इस वक्त तो मैं हंस रही होंगी लेकिन मेरा दिल अंदर से रो रहा था उससे बात करते हुए भी। ये बच्ची कभी अच्छी बीवी बनेंगी? वल्ला ही नहीं बनेंगी। देखिए अर रिजालु कवामून अला निसा, इस वक्त हम सिर्फ बेटों को ना देखें, बेटियों को भी तो देखें ना। आज हमने अपनी यूथ को जिस स्टाइल ऑफ लिविंग पे डाल दिया, बेटी बेचारी को बीवी बनने से पहले एक कवाम बनना पड़ता है। और माजरत के साथ मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आज के दौर में लड़के मोर रिलैक्स्ड हैं, लड़कियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। इल्ला माशाल्लाह, गलत हो सकता है, मेरी बात है, सारी बातें भी गलत हो सकती हैं क्योंकि बात अल्लाह और उसके रसूल की सच है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने एक बच्ची को लड़का बनाकर पाला, शुरू से लेके गेटअप बच्चे का, बच्ची का, बेटों पे इतना प्रेशर नहीं है, बेटियों पे ज़्यादा है। लड़कों को तो कभी फ्रॉक्स पहनी भी नहीं देखी होंगी आपने, कभी कोई लड़का स्कर्ट पहन के कॉलेज जाए तो कैसा लगे, लेकिन लड़की ही है बेचारी जिसको फिर बार बार अपने रंग रूप को बदलना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम अपनी बच्ची से एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि अच्छी बीवी बन के रहना, बड़ी खिदमत करना, घर बसाना, सब्र करना, शुक्र करना, और अच्छी बीवी की उसको 20 निशानियां भी बता दें कि ये निशानियां होती हैं, आप मुझे बताइए क्या वो बच्ची हमारी तवक्कात पे पूरी उतरेगी? ये कुर्सी है, ये मेज़ है मेरे सामने, टेबल है, कुर्सी पे मैं भी बैठी हुई हूँ, क्या आप मैं चेयर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेबल वाला काम भी करे, यानी मेरा माइक भी इस पे हो, लैपटॉप भी इस पे हो और इसी तरह की बाकी चीज़ें? नहीं कर सकती ना, करूँगी तो मेरी बेवकूफ़ी है। और इस टेबल को मैं ज़रा सा नीचे करके बिल्कुल कुर्सी के बराबर कर दूँ और थोड़ा सा बेंडेड कर दूँ, क्या ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा? अफसोस के साथ कहूंगी कि आज हम अपने बेटों और बेटियों के स्टेटस को, कल जिंदगी में उन्होंने करना क्या है, इसको इतना बदल चुके हैं कि चेयर की जगह टेबल और टेबल की जगह चेयर आ चुकी है। ये है वो वजह जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं, शादियां छूट रही हैं, लड़की को लड़की नहीं बनना आ रहा, बेचारी कोशिश भी करती है पर देखे ना आदत हो जाती है। आप जूती इस्तेमाल करके थोड़े दिन छोड़ देना तो उसकी शेप बदल जाएगी। और अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में इसी तरह हुई हैं। अब आप कहते हैं कि इतनी बातें हैं, इसमें कुछ सही लगी होंगी आपको, बहुत सारी आपको बातें मेरी अच्छी भी नहीं लगी होंगी, इलाज क्या है ये रमज़ान जो आपके सामने है, और ये कुरान जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेरे हर एक के फ़ोन में अब तो है, इलाज कुरान और रमज़ान में है। कैसे मैं दोनों का रब्त आपके सामने रखूंगी? खराबियां तो 101 है, खूबियां भी बहुत हैं। यकीन करें हमारे बच्चे इस वक्त कस्तूरी की वो ढेरियां कि जिसके ऊपर हमने श्रिंक रैप डाल दिया है, जिनके ऊपर हमने प्लास्टिक कोडिंग करवा दी है, विनीर चढ़ चुके हैं। इतनी प्यारी यूथ है इस वक्त हमारी, मैं तो इतनी पुरउम्मीद हूँ। कल भी हम ट्रेन में थे, बिलीव मी कि पेरिस से लंदन आने वाले लोगों में, ट्रेन्स में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, जितने यंग थे उस ट्रेन में लड़के बियर्ड थे और लड़कियों ने स्कार्फ लिए हुए थे, मॉडेस्ट कपल थे, एक दो कपल था हमारी कैबिन में, और चेहरों पे एक खूबसूरती है। आपको बाहर जाते हुए सच बताएं कि अब काली दाढ़ी वाले ज्यादा दिखते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले? और माजरत के साथ आज भी कई लोगों के हस्बैंड क्लीन शेव्ड हैं और बेटे दाढ़ियों में, आज भी माँ एक रिवायती सी चादर दुपट्टा लेके जाती हैं, बेटी फिर भी मॉडर्न लिबास पहनती है। और आप देखिएगा जिस तरह क़यामत के करीब सूरज मशरक़ की बजाय मगरिब से निकलेगा ना, ये इस्लाम का सूरज भी ये मगरिब से ही निकलना है, ये भी वेस्ट से ही निकलेगा। हमारी वेस्टर्न यूथ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक तो बातें बड़ी सुन ली लेकिन एक दिन तो ज़ुबान खुली जाती है ना, हर बात हम पे क्यों पड़ती है, आखिर हम ही बुरे क्यों बने, आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों मामला हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि क्या हम इतने बुरे हैं? जब इतनी गालियां सुन लेता है ना बंदा तो एक दिन उसके अंदर की गैरत जागती है। जैसे अब कुछ मुल्कों में जहां बहुत सालों से जंग चल रही है ना, तो वहां की अगर आप टीवी में जो झलकियां आती हैं या कुछ तो देखा करें, छोटे छोटे बच्चे को नहीं डरते फौजियों से, वो उनके आगे बोलते हैं, क्योंकि एक हद होता है, जैसे सास बहुत जुल्म करेगी तो एक दिन बहू बोल पड़ेगी ना। हमारे इन बच्चों को अगर इस वक्त हमने थोड़ा सा टेम कर लिया, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले हमारी तरबियत हो। आज आप और मैं इस लेक्चर के एंड पे खुद से सोचें, नंबर एक उम्मे मूसा वाला किरदार मेरा है, क्योंकि आज जब हम बच्चों के कैरियर की बात करें तो हम खुद सबसे पहले परेशान हो जाते हैं। हमने आज के एजुकेशनल सेटअप को ऐसे एक्सेप्ट किया है जैसे 5 नमाजों को करना चाहिए था। सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे इस सेटअप से निकलेंगे और कामयाब होंगे। अब देखिए कि सीधी सी बात है, नेविगेटर को फॉलो करने से पहुंच जाता है बंदा एक जगह पे, इस ट्रू जैसे मिसाल दी शुरू में, लेकिन अगर आपने नेविगेटर में ये हाई वेकम की बजाय आपने साउथ हॉल की डायरेक्शन डाली होती, आप सारा दिन भी घूमते रहते, आप यहाँ नहीं पहुँचते। आज हम मुस्लिम पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने अपने बच्चों की सक्सेस के नेविगेटर में डायरेक्शन रॉन्ग डाली हुई है। देखिए वलयसरन्न अलइंसान अलफी खुस इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। सिर्फ ये सूरत असर का अगर आप पैगाम देख लें, असल कामयाबी क्या है, रियल सक्सेस, व्हाट इज रियल सक्सेस? आमनू अमिलुस्सालिहात, आमनू आपका अपना ईमान है, ताल्लुक बिल्लाह अल्लाह के साथ आपका अच्छा मामला, आमिलु साले हाथ के जो आपके अपने अच्छे अमल हैं जो आप वाकई एक फ़र्द होने के नाते और एक कौम होने के नाते भी करते हैं, वह तवासु बिल हक के है, ये मिस है। आज माजरत के साथ जो पेरेंट्स वाली जनरेशन बैठी है ना इस वक्त, यानी 40s 50s के जो करीब के जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर जो इस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उनकी प्राइम या पीक ऑफ सक्सेस इज इन लजीना आमनु वामिलुस्सालिहात। ये 2 महीने पहले पाकिस्तान में एक सीरीज चली थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी दफा ये जुमला बोला है कि जब मेयार ही हमारा ये है कि 10 सीढ़ियां चढ़नी है तो 11वीं तो कोई देखेगा भी नहीं ना। जैसे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं किसी बिल्डिंग के, 10th के बाद फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, तो क्या आप 11th सीढ़ी पे कभी कदम रखेंगे, 12th पे रखेंगे? आप मुतमईन है कि बस मेरे लिए यही कामयाबी है? बिल्कुल इसी तरह इस वक्त हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने सक्सेस अपनी और बच्चों की, अपनी थी तभी तो बच्चों को भी नहीं दी ना। वो कह के इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, अच्छे काम करो, बुराई ना करो, जिना ना करो, पीक तो यही है ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे मुसलमान ये कर भी रहे हैं। जितने लोग अब उम्रे के इंतज़ार में होते इतने पहले नहीं होते थे, जितने लोग हर साल हज पे जाते इतने पहले नहीं जाते थे, जितने कुरान आज पब्लिश होते हैं इतने पहले नहीं होते थे, जितनी मस्जिदें आज आपके इस मुल्क में कभी पहले थी नहीं थी ना। इनफिरादी तौर पे मुसलमान अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। चले सारे नहीं नमाज पढ़ रहे, लेकिन पढ़ने वाले भी तो बहुत हैं। लेकिन ना तकरीबन 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं इस वक्त, मारी बांधी जुम्मे की, उसमें से 1 बिलियन जुम्मे की नमाज तो पढ़ते ही है ना, पढ़ते हैं ना। अल्लाह को नमाजों की क्यों बर्बानी हो रही? वजह ये कि व तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र नहीं है। 10वीं सीढ़ी पे आपका आमन और अमिलु सालेहात था, 11वीं से शुरू होता है। अब उठिए जरा सोसाइटी के अंदर भी इस हक बात को लेकर चलिए।